आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम सब पर एक दबाव है, कामयाब बनो, आगे बढ़ो, खुद के लिए कुछ करो।
हाँ, हमारी पूरी सोचना मैं और मेरा के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन क्या हो अगर कामयाबी का ये पूरा आइडिया ही अधूरा हो? क्या हो अगर हमारी असली तरक्की अकेले आगे बढ़ने में नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने में हो?
ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आज हम जिस स्रोत पर बात करने वाले हैं वो इसी सवाल के दिल में उतरता है।
बिल्कुल, आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा रचित एक बहुत ही दिलचस्प लेख की गहराई में उतर रहे हैं। नाम है हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। अब ये नाम सुनने में बहुत भारी भरकम लग सकता है, पर असल में ये एक तरह की, आप कह सकती हैं, व्यक्तिगत शपथ है।
हाँ, खुद से किए गए वादों का एक सेट, एक बेहतर समाज बनाने के लिए।
हाँ।
और हम इसके सिर्फ एक वादे, पांचवें संकल्प पर आज ध्यान देंगे,
जी
जो बहुत ही सरल भाषा में एक क्रांतिकारी विचार सामने रखता है।
जी और वो संकल्प है,
ने आपको समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। आज हम इसी एक लाइन को खोलकर देखेंगे कि हमारे आज के जीवन के लिए, हमारे समाज के लिए इसके क्या मायने हैं।
चलिए इस सोच की परतों को उधेड़ते हैं।
तो शुरू कहाँ से करें? ये विचार कि सबके हित में मेरा हित है, ये सिर्फ एक अच्छी बात है या इसका कोई गहरा मतलब भी है?
देखिए, ये सिर्फ एक अच्छी बात या कोई नैतिक सलाह नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। एक तरह से ये हमें मैं का चश्मा उतारकर हम का चश्मा पहनने के लिए कहता है। इसका मूल सिद्धांत यह है कि एक व्यक्ति का विकास, एक परिवार की संस्कृति और पूरे समाज की खुशहाली, ये तीनों चीजें अलग अलग नहीं हैं।
मतलब ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं।
हाँ, एक ही धागे में पिरोई हुई हैं।
इसी बात को समझाने के लिए सत्संकल्प में शुरू में ही एक बहुत जबरदस्त मिसाल दी गई है। समाज एक शरीर की तरह है और हम सब उसके अंग हैं। इस मिसाल ने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया।
हाँ, ये मिसाल इस विचार की नींव है। जैसे सोचिए, अगर हाथ में चोट लगती है तो क्या सिर्फ हाथ को दर्द होता है? नहीं, पूरा शरीर बेचैन हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता, मन परेशान रहता है।
सही बात है, अगर आंखें देख नहीं सकती तो पैर कितने भी मजबूत क्यों न हो, वो ठीक से चल नहीं पाएंगे।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं ठोकर खाई जाएंगे। हर अंग का सुख दुख, अच्छा बुरा, पूरे शरीर से जुड़ा है।
और अगर हम इसी नजरिए से समाज को देखें तब तो ये विचार बहुत शक्तिशाली हो जाता है।
हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर समाज का एक हिस्सा पिछड़ा हुआ है या तकलीफ में है तो हम ये सोचकर
खुश नहीं हो सकते कि चलो हम तो ठीक हैं।
हाँ, क्योंकि उस शरीर के अंग होने के नाते देर सवेर वो दर्द हम तक भी पहुंचेगा।
बिल्कुल,
और इसी बात को ना एक और कदम आगे ले जाकर कहा गया है कि सारी इंसानियत एक ही नाव में बैठी है। अगर उस नाव में एक भी छेद हो जाता है तो खतरा सिर्फ उस छेद के पास बैठे व्यक्ति के लिए नहीं होता।
पानी भरेगा तो नाव डूबेगी,
और उस नाव में बैठा हर एक इंसान डूबेगा। यही एक होने का एहसास जिसे सत्संकल्प में एकानुभूति कहा गया है, किसी भी समाज या देश की असली ताकत है।
और इसके बिना?
इसके बिना लाखों करोड़ों लोग सिर्फ एक बेतरतीब भीड़ हैं, समाज नहीं है।
ठीक है, तो अगर हम सब एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए हैं तो फिर समाज में न्याय और बराबरी का सवाल सबसे अहम हो जाता है। सत्संकल्प में इस पर बहुत मजबूती से बात की गई है। एक लाइन है, 100 हाथों से कमाओ भले ही, पर उसे 1000 हाथों से दान अवश्य कर दो। अब ये सुनने में बड़ा काव्यात्मक लगता है, पर इसका व्यवहारिक मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ दान पुण्य करने की बात है?
नहीं, ये सिर्फ दान पुण्य से कहीं ज्यादा गहरी बात है। इसका सीधा निशाना उस मानसिकता पर है जिसे हम संग्रह वृत्ति कहते हैं, यानी सिर्फ जमा करते जाने की आदत।
अच्छा,
पूज्य गुरुदेव एक बहुत ही चुभने वाली बात कहते हैं। वो समझाते हैं कि कोई भी इंसान जरूरत से बहुत ज्यादा धन तभी जमा कर सकता है जब उसके अंदर तीन अवगुण आ जाएं, कंजूसी, स्वार्थ और निष्ठुरता।
निष्ठुरता यानी पत्थरदिली।
हाँ, पत्थरदिली।
एक मिनट, इसे थोड़ा और खोलते हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा है। मतलब सत्संकल्प ये कह रहा है कि बहुत ज्यादा अमीर बनने के लिए आपको कहीं ना कहीं कठोर बनना ही पड़ता है।
हाँ, ये एक बहुत ही असहज करने वाला विचार है। और देखिए, ये मेहनत और काबिलियत पर सवाल नहीं उठा रहा है, ये नियत पर सवाल उठा रहा है। इसका तर्क ये है कि जब आप देखते हैं कि आपके आसपास लोग भूखे हैं, बच्चे अच्छी शिक्षा या इलाज के बिना जी रहे हैं, और ये सब देखकर भी आप सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने में लगे रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने दूसरों की जरूरतों से अपनी आंखें मूंद ली हैं।
आपने खुद को समाज से काटकर अलग कर लिया है।
जी, यही तो सामाजिक अन्याय है।
लेकिन एक तर्क ये भी तो दिया जा सकता है कि जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है वो अपनी सफलता का हकदार है। ये विचार कहीं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को हतोत्साहित तो नहीं करता कि अगर ज्यादा कमाया तो देना ही पड़ेगा, तो फिर कोई ज्यादा मेहनत क्यों करेगा?
ये बहुत जरूरी सवाल है। और सत्संकल्प मेहनत करके कमाने के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो तो कह रहा है 100 हाथों से कमाओ, यानी खूब उत्पादन करो, खूब कमाओ।
अच्छा।
लेकिन वो कमाने की प्रक्रिया को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ता है। वो कहता है कि जो भी संसाधन, ज्ञान या अवसर आपको मिले हैं, वो सिर्फ आपके नहीं, उन पर समाज का भी हक है। इसलिए आप उत्पादन तो भरपूर करें, पर उसके फायदे को बांटें।
मिलजुल कर खाना और जीना ही समाज को अमीर और गरीब के बीच की खाई के जहर से बचाता है।
बिल्कुल।
तो ये सिर्फ आर्थिक बराबरी की बात नहीं है, बल्कि एक तरह की सामाजिक सोच की बात है, और मुझे लगता है यही सिद्धांत सामाजिक बराबरी पर भी लागू होता है।
हाँ बिल्कुल, सत्संकल्प बहुत साफ कहता है कि किसी जाति, वंश या कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा या नीचा नहीं हो जाता। मनुष्य की असली पहचान उसके गुण, कर्म और स्वभाव से बनती है, जन्म से नहीं। किसी को उसकी काबिलियत के लिए ज्यादा सम्मान मिल सकता है, ये स्वाभाविक है, पर जन्म के आधार पर किसी को बड़ा या छोटा मानना, ये एक तर्कहीन और पिछड़ी हुई सोच है।
और इसमें सिर्फ जाति ही नहीं, बल्कि स्त्री पुरुष की बराबरी पर भी जोर दिया गया है।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सत्संकल्प कहता है कि स्त्री और पुरुष के बीच शारीरिक बनावट में कुछ अंतर हो सकते हैं, लेकिन इस आधार पर किसी को कमजोर या महान मानना एक बहुत बड़ी भूल है। दोनों ही समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, और गाड़ी तभी ठीक चलेगी जब दोनों पहिए बराबर और मजबूत हों।
इस पूरी चर्चा से एक और दिलचस्प बात निकल कर आती है, जिस पर सत्संकल्प बहुत बारीकी से ध्यान दिलाता है, सुख और हित के बीच का फर्क। ये सुनने में एक जैसा लग सकता है, पर इसमें बहुत गहरा अंतर है।
हाँ, ये इस पूरी फिलॉसफी का एक केंद्रीय बिंदु है।
इसे समझाने के लिए बहुत सरल उदाहरण दिए गए हैं, जैसे देर तक सोने में सुख मिल सकता है, लेकिन शरीर का हित सुबह जल्दी उठने में है
जी।
या फिर मनपसंद तला भुना मसालेदार खाना खाने में बड़ा सुख मिलता है, पर सेहत का हित तो संतुलित भोजन में है।
सही है।
ये तो हुई व्यक्तिगत बात, लेकिन ये समाज पर कैसे लागू होती है?
ये समाज पर हूबहू लागू होती है। सुख अक्सर हमारी तात्कालिक इच्छाओं, हमारी आदतों और व्यक्तिगत मान्यताओं से जुड़ा होता है। ये अक्सर क्षणिक होता है, यानी जिसे हम कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन
जी,
जबकि हित का संबंध उन शाश्वत सिद्धांतों से है जो लंबे समय में व्यक्ति और समाज दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं, यानी लॉन्ग टर्म वेलबींग।
क्या आप इसका कोई आज के जमाने का उदाहरण दे सकते हैं?
जरूर। सो की एक बड़ी कंपनी है, वो नदी के किनारे अपनी फैक्ट्री लगाती है और सारा केमिकल वाला गंदा पानी नदी में बहा देती है। इससे उसका खर्च बचता है, प्रॉफिट बढ़ता है, ये उस कंपनी का तात्कालिक सुख हो सकता है।
लेकिन
हजारों लोगों के पीने का पानी जहरीला हो जाता है, बीमारियां फैलती हैं, पर्यावरण को भारी नुकसान होता है, तो ये समाज के हित के खिलाफ है। सत्संकल्प का निर्देश यही है कि जब भी व्यक्तिगत सुख और सार्वजनिक हित में टकराव हो, तो सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दो।
मतलब ये हर स्तर पर लागू होता है। एक नागरिक के तौर पर ट्रैफिक नियम तोड़कर जल्दी निकलने में मेरा सुख हो सकता है, लेकिन सबका हित नियम का पालन करने में है।
एकदम सही।
एक नेता के लिए भड़काऊ भाषण देकर चुनाव जीतने में सुख हो सकता है, लेकिन समाज का हित शांति और एकता बनाए रखने में है।
एकदम सही पकड़ा आपने। और जब हम अपने व्यक्तिगत सुख को, अपने स्वार्थ को सामूहिक हित के लिए त्याग देते हैं, तो सत्संकल्प उसी भावना को पुण्य और परमार्थ कहता है। देशभक्ति, त्याग, बलिदान, सेवा, ये सारे महान गुण इसी सोच से पैदा होते हैं।
और यहीं पर सत्संकल्प एक और बहुत कठोर, लगभग चौंकाने वाली बात कहता है। शास्त्रों का हवाला देते हुए कहा गया है कि जो अपनी कमाई को अकेले खा जाता है, उसे चोर माना गया है। चोर, ये बहुत ही मजबूत शब्द है। ये क्यों कहा गया है?
ये शब्द इसलिए कठोर लगता है क्योंकि हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, लेकिन ये विचार उस मान्यता को ही चुनौती देता है। इसका तर्क ये है कि आज हमारे पास जो कुछ भी है, हमारा ज्ञान, हमारी सुविधाएं, हमारी क्षमताएं, वो सिर्फ हमारी अपनी मेहनत का फल नहीं है।
मतलब
ये कि हम एक बहुत बड़ी विरासत के हिस्सेदार हैं।
आज हम जिन पक्की सड़कों पर चलते हैं, वे हमने नहीं बनाई। जिन पुस्तकों से ज्ञान लेते हैं, वे हमने नहीं लिखी। बिजली, इंटरनेट, दवाइयां, ये सब हजारों लाखों लोगों की सदियों की मेहनत और त्याग का नतीजा है जो हमें विरासत में मिला है। ये सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। ये कुछ ऐसा है जैसे जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कुछ लोग उसे बनाना शुरू करते हैं, फिर हजारों लोग उसमें अपना योगदान देते हैं और आज हम सब उसका मुफ्त में इस्तेमाल करते हैं। सत्संकल्प ये कह रहा है कि पूरा समाज ही एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की तरह है।
क्या खूब मसाल दिए, बिल्कुल यही बात है। त्याग और उपकार की इसी प्रक्रिया को, मतलब अपने हिस्से का योगदान देकर इस विरासत को और समृद्ध बनाने की प्रक्रिया को ही धर्म, संस्कृति और मानवता कहा गया है। अगर हम इस चेन को तोड़ दें और सिर्फ स्वार्थी बन जाएं, सिर्फ उस विरासत का उपभोग करें और उसमें कुछ भी न जोड़ें, तो धीरे धीरे मानवीय संस्कृति ही खत्म हो जाएगी। इसलिए अपनी कमाई को समाज से, जिसने हमें इतना कुछ दिया है, साझा न करना एक तरह की चोरी है।
इस निस्वार्थ भाव को, इस परमार्थ को सिर्फ एक किताबी विचार न रहने दिया जाए, इसके लिए सत्संकल्प में श्रावस्ती की एक कहानी भी दी गई है। वो कहानी क्या है, वो इस विचार को कैसे जीवंत करती है?
ये एक बहुत ही मार्मिक और प्रेरणा देने वाली कहानी है। एक समय की बात है, श्रावस्ती नाम के नगर में भयंकर अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं, अन्न के भंडार खाली हो गए और लोग भूख से मरने लगे। तब भगवान बुद्ध ने शहर के सभी अमीर सेठ साहूकारों की एक सभा बुलाई। उन्होंने कहा, नगर पर संकट है, लोग मर रहे हैं, आप सब समर्थ हैं, इनकी मदद कीजिए।
तो जाहिर है सबने मदद की होगी।
यहीं तो कहानी में मोड़ है, किसी ने भी मदद नहीं की, सब बहाने बनाने लगे। एक सेठ बोला, भगवान इस साल व्यापार में बड़ा घाटा हो गया, मेरे पास तो देने को कुछ नहीं है। दूसरा बोला, मेरी तो सारी फसल ही चापट हो गई, मैं खुद कर्ज में डूबा हूँ। सब ने अपनी अपनी मजबूरियां गिना दी और जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया।
यानी सब अपने तात्कालिक सुख और अपने जमा किए हुए धन को देख रहे थे, समाज के हित को नहीं।
बिल्कुल। उसी सभा में एक कोने में सुप्रिया नाम की एक गरीब कन्या बैठी थी। वो खुद भिक्षा मांगकर, यानी भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। वो खड़ी हुई और बड़ी हिम्मत से बोली, भगवान आप चिंता ना करें, मैं इन सबको अन्न दूंगी।
ये तो हैरान करने वाली बात है, जिसके पास खुद कुछ नहीं है वो सबकी मदद कैसे कर सकती है?
सब लोग उस पर हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे लड़की, तू तो खुद भीख मांगकर पेट भरती है, तू हमें क्या खिलाएगी? तब सुप्रिया ने जो जवाब दिया वो इस पूरे सत्संकल्प का सार है। उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, ये सच है कि मैं भिक्षुणी हूं, पर मैं आज से अपने लिए नहीं, इन भूखे और पीड़ित लोगों के लिए घर घर जाकर भीख मांगूंगी। मैं दो गुना परिश्रम करूंगी, पर अपने नगर में किसी को भूख से मरने नहीं दूंगी।
वाह!
उसका ये निस्वार्थ संकल्प, उसकी ये करुणा और हिम्मत देखकर वहां बैठे सभी अमीर लोगों के सिर शर्म से झुक गए। उन्हें अपनी कंजोसी और अपने स्वार्थ पर ग्लानि हुई, उनका दिल पिघल गया और उन्होंने अपने अपने अन्न के भंडार खोल दिए। देखते ही देखते अनाज का ढेर लग गया और पूरे नगर का संकट टल गया।
ये कहानी परमार्थ की ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब नियत साफ हो तो एक अकेला साधनहीन व्यक्ति भी पूरे समाज की सोच बदल सकता है।
बिल्कुल।
तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये पांचवा संकल्प असल में हमारी सोच के पैमाने को बदलने का आह्वान है। ये हमें मैं के छोटे से दायरे से निकालकर हम के विराट विस्तार में ले जाने की बात करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अकेले द्वीप नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े महाद्वीप का हिस्सा है। हमारी खुशियां, हमारी सुरक्षा, हमारी तरक्की, सब कुछ उस समाज से जुड़ी हुई है।
बिल्कुल सही। हमारी अपनी भलाई और समाज की प्रगति, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस सत्संकल्प को समझने के बाद हमारे सामने दो रास्ते साफ दिखाई देते हैं। एक रास्ता परमार्थ का है, त्याग का, सेवा का, महानता का। इसी रास्ते पर चलकर इंसान महापुरुष बनता है और समाज को बेहतर बनाता है।
और दूसरा रास्ता?
और दूसरा रास्ता स्वार्थ का है, संकीर्णता का, जमाखोरी का, जो अंत में आपराधिक मानसिकता को जन्म देता है और व्यक्ति को अकेलेपन और विनाश के गड्ढे में गिरा देता है। ये संकल्प हमें सही रास्ता चुनने की समझ और प्रेरणा देता है,
और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे समाज की आज की बहुत सारी समस्याएं, चाहे वो आर्थिक असमानता हो, सामाजिक भेदभाव हो या फिर पर्यावरण का संकट, शायद कहीं ना कहीं हम इसी एकता की भावना को, इसी हम वाली सोच को भूलते जा रहे हैं, उसी का नतीजा है।
ये एक विचार करने योग्य प्रश्न है जो ये चर्चा हमारे लिए छोड़ जाती है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने छोटे छोटे फैसलों में कितनी बार सामूहिक हित के बारे में सोचते हैं?
जब हम खरीदारी करते हैं, जब हम वोट देते हैं, जब हम अपना समय बिताते हैं, क्या हम सिर्फ अपना फायदा देखते हैं या उसका असर दूसरों पर क्या पड़ेगा ये भी सोचते हैं?
और आज हम ऐसा कौन सा एक छोटा बदलाव कर सकते हैं जिससे इस महान संकल्प को सिर्फ कहने की नहीं बल्कि जीने की शुरुआत हो सके?